संसार के अनुसार कथा नहीं होगी तो उसका प्रत्यवाय होता है। इसलिए अधिकारी वर्गों में ही उस तरह की कथा होनी चाहिए। किंतु सुखदेव गोस्वामी कैसे हैं, कोई भी उनको दर्शन करने से उनके हृदय में प्रेम आ जाएगा। तो फिर योगी और दूसरे लोग जिनका चित्त शांत हो गया है, विषयों से उपरत हो गया है, उनकी तो बात ही क्या। बल्कि ये दिखलाया नारद जी के बहुत दिनों के संग और उनकी कथा से प्रहलाद महाराज जी परम भागवत हुए, और प्रहलाद महाराज जी के संग से असुर बालक जिनमें भक्ति का लेश संस्कार भी नहीं था, जन्म का पूर्व जन्म का कोई भक्ति का संस्कार नहीं, और विरोधी थे असुरों के संग में रहने वाले, ऐसे लोगों के हृदय में भी भक्ति का संचार कर दिया, भाव अंकुरित हो गया, और वो लोग बड़े प्रेम के साथ में भगवान का गुणानुवाद करने लगे परीक्षित महाराज जी के साथ में। तो फिर सुखदेव गोस्वामी जैसे महाभागवत के लिए, भागवत प्रधान के लिए उस सभा को अपने अनुरूप ढाल देना क्या संभव था। इसलिए उनके लिए ये नहीं, ये तो और दूसरे लोगों के लिए, स्वयं अधिकारी नहीं है वो, कनिष्ठ अधिकारी हैं या मध्यम अधिकार में भी हैं, भागवत नहीं हुए हैं, उन लोगों के लिए अधिकार निर्णय की बात। वो लोग अधिकार के अंकुश से सब समय शास्त्रों का अंकुश उस पर नहीं है, ऐसे मुक्त महापुरुषों पर। इसलिए उत्तम श्लोक पदार बिंदयो निषेवया अकिंचन संलब्धया तन्मन परा नवृत्तिमात्मनो मुहुर् दुख दुःसंग दीनस्य मनः समं व्यधात्। इसलिए श्रीमद्भागवत के सप्तम स्कंद में प्रहलाद महाराज जी के चरित्र में ये बतलाया गया, उत्तम श्लोक पदारविंदयो, ये कृष्ण ही उत्तम श्लोक है, इनकी सब समय हृदय में सेवा करने से निसेवया, अर्थात उनका चिंतन मनन कीर्तन करने से, कौन करने वाले जो नारद ऋषि हैं, ऐसे अकिंचन जो महापुरुष हैं और परम मुक्त हैं, पार्थक शरीर लाभ किए हुए हैं, उनके संग से लाभ करके तन्वन परानिवृत्तिम आत्मनो, प्रहलाद महाराज जी महाभागवत हुए और महाभागवत होकर के क्या किया, दुःसंग दीनस्य, असुर बालक जो हैं वो दुःसंग हैं, सब समय विषय की चर्चा करने वाले, उनमें भक्ति का कोई लेश मात्र भी गंध नहीं है, संस्कार नहीं है, और अत्यंत दीन है। कैसे दीन, भक्ति जिनमें नहीं, विषयों में लौलीन है, उनका मन समम व्यधार, वो सम अवस्था को प्राप्त हो गया। सम किसको कहते हैं, सम माने समो निष्ठा, सम कहते हैं निष्ठा, भगवान में निष्ठा उनकी हो गई, साथ ही साथ अत्यंत उच्च अधिकारी हो गए ये लोग, संग मात्र से उनकी कथा होते जो कि सप्तम स्कंद में वर्णित है। फिर परमहंस चूड़ामणि जो सुखदेव गोस्वामी जी हैं, व्यास जी का संग पाया, कृष्ण का संग पाया, और कृष्ण की लीला कथा अत्यंत रहस्य में जो श्रीमद भागवत है उसको सुनने और सुनाने वाले, और कैसे परम भक्ति जिनके प्रेम जिनके हृदय में है, इसलिए इनके संग मात्र से ही वहां रहने वाले, वहां जो सुनने वाले हरि कथा सुन रहे थे, ऐसे कर्मी ज्ञानी जो कुछ न कुछ कथा सुने हुए होंगे, असुर बालक से उन्नत होंगे, तो उन पर इनका प्रभाव नहीं पड़ा होगा, और वो इनके संग से वैष्णव नहीं हो गए होंगे, अधिकारी नहीं हो गए, इसे जरूर हुआ होगा। इसका ये तात्पर्य है। दूसरा बात, उनको भगवान कहा गया, कौन कह रहा है भगवान, ये परीक्षित महाराज जी ही कह रहे हैं, समझो या सुत गोस्वामी जी का। सच्चिदानंद जो विग्रह भगवान का है उसमें भव होते हैं छह, ऐश्वर्य और माधुर्य के ये निलय होते हैं, आधार होते हैं, ये छह ऐश्वर्य जिनमें रहते हैं, इसलिए वो जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय करने में भी समर्थ है, इसलिए ये भगवान है। ऐश्वर्य समग्रस्य बीजस्य ज्ञान वैराग्यस्य एव सन्ना भवति, इनको भगवान कहते हैं, जो कि जिनमें ऐश्वर्य है। कैसा ऐश्वर्य? ब्रह्मा जी ने देखा उनके जैसे करोड़ों ब्रह्मा लोटपोट कर रहे हैं द्वारका में, और वो चुपचाप भीतर में बैठे, इनको स्थान ही नहीं मिला उस बड़ी सभा में, धर्म समय में उनको जगह नहीं, बाहर से देखा। ऐसे ऐश्वर्य वाले, ऐसे ऐश्वर्य वाले हैं जो कि गरुड़ पर चढ़ करके चले गए स्वर्ग में और समस्त देवताओं को पराजित कर पारिजात वृक्ष और सुधर्मा सभा इस जगत में लेकर गया। एक ही साथ में 16,000 के कितने करोड़ों करोड़ों गोपियों के साथ में करोड़ों करोड़ों कृष्ण के रूप में प्रकट हो गए, और सभी रानियों के साथ में 16,100 महावाली नरकासुर की बंधक में रखी हुई स्त्रियों के साथ में शादी, अलग अलग कायर भी हो जैसा नहीं, अलग अलग स्वरूप ही में उन्होंने विवाह। तो ऐसे ये ऐश्वर्यवान है, और भागवत में सर्वत्र उनके ऐश्वर्य और माधुर्य की कथाएं वर्णित की हैं, इसलिए ये छवों को अलग अलग भग कहते हैं। ये छव जिसमें है ऐश्वर्य, वीर्य, जस, श्री, ज्ञान और वैराग्य, जिसमें से चार उनके अपने गुण हैं, भग हैं। ऐश्वर्य समग्र ऐश्वर्य, समग्र वीर्य, जस और श्री, ये चार मूल गुण हैं, और जस के दो भाग हैं, वो हैं ज्ञान और वैराग्य, वो स्वयं गुण नहीं है, स्वयं माने गुण के गुण हैं। इस तरह से छ ये भगवान की भगवत्ता है। तो जिसमें रहे उसको कहते हैं, और भव अखिल विश्व ब्रह्मांड के गोलोक वृंदावन से लेकर के आप ब्रह्म स्तंभ तक समस्त प्राणियों के भरण पोषण करने वाले जो हैं, भरण पोषण करता भव, गमने गमयिता, गमयिता माने संचालक, सब विश्व ब्रह्मांड के सब ऊपर से नीचे तक संचालक, और वह अखिल प्राणियों में वास करने वाले अखिल प्राणी उनमें वास करते हैं, इससे जो युक्त हैं उसको कहते हैं भगवान। किंतु व्यास, सु, नारद इत्यादि को भी शास्त्रों में भगवान कहा गया। किस लिए कहा गया? विष्णु पुराण का एक श्लोक दिया इन्होंने, हमारे जीव गोस्वामी ने या सनातन गोस्वामी ने, उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम अगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्यांच सब वाच्यो भगवान इति। उत्पत्ति, सबकी उत्पत्ति करने वाले, प्रलय, प्रलय करने वाले, भूतानाम अगतिम गतिम, भूत माने प्राणी की गति और अगति, कैसे ये संसार मार्ग में फंसता है भगवान का नित्य दास होने पर, और किस प्रकार से गतिम फिर भगवान को बहिर्मुख अवस्था से अंतर्मुख अवस्था आकर के भगवान को प्राप्त कर जाता है। वेत्ति विद्याम अविद्यांच, वो विद्या को जानता है और अविद्या को भी जानता है। विद्या क्या? किस प्रकार से जीव मुक्त हो सकता है, उसकी अविद्या दूर हो सकती है, बहिर्मुखता दूर हो सकती है, और किस प्रकार से अविद्या, किस प्रकार से जीव बंधन में आता है वो जानता है। जीव कहां जाता है, कहां से आता है, ये गति और अगति, और विद्या माने समस्त विद्याओं का सार भक्ति है। विद्या बधु नाम, विद्या बधु के जीवन है पति। तो ये विद्या क्या माने, श्रद्धा से आरंभ कर श्रद्धा निष्ठा रुचि आसक्ति भाव भक्ति प्रेम और प्रेम से महाभाव इत्यादि तक, ये सब विद्या है। इस विद्या को जानने वाले हैं, जीवों को ये विद्या को दे करके कृष्ण की सेवा में निजुक्त करने वाले, और अविद्यांच कैसे जीव भगवान के माया के फेर में पड़ता है, जो जानता है सब बाच्यो भगवान इति, उसको भी भगवान कहते हैं। तो इसमें से कोई एक भी हो गुण तो उसको भगवान कहा जा सकता है। ये जगत की सृष्टि स्थिति और विश्व का नियंता नहीं होने पर भी व्यास देव, नारद जी, सुखदेव गोस्वामी और विशेष विशेष आचार्य लोग को भगवान कहा जा सकता है, आएंगे वो भी हैं। तो इस तरह से ये यहाँ तक कि जो शुद्ध गुरु हैं, सद्गुरु, इन चीज में विद्या विद्या को जान करके जीवों की गति अगति को जानने वाले हैं, किंतु इन सबों में सबसे अधिक ये जानने वाले कौन हैं, सुखदेव गोस्वामी। इसलिए इनको भगवान कहना कोई असंगत नहीं है, इसलिए उनको भगवान कहा गया है। विशेष करके सुखदेव गोस्वामी जी, व्यास जी, नारद जी, इन छह तत्वों में अभिज्ञ हैं। कौन तत्वों में, विश्व की उत्पत्ति कैसे होती है, लय कैसे होता है, पालन कैसे होता है, प्राणी लोग कहाँ जाते हैं, कहाँ से आते हैं, उनकी विद्या और अविद्या, संसार बंधन और उनकी मुक्ति, ये सब विषय में तत्वों को जानने वाले हैं, इसलिए इनको भगवान कहा गया है। भागवत के नौवें स्कंद में ये देखा जाता है, साधु हृदय मह्यम, साधु नाम तुम हृदय तुम हम मदन्नते न जानती ना हम तेभ्यो मना अभी। दुर्वासा ऋषि के साथ प्रसंग में ये कहा गया है। दुर्वासा ऋषि सब जगह हार करके चले गए, अंत में भगवान नारायण के पास में पहुंचे और चक्र से अपना पिंड छुड़ाने के लिए उनसे प्रार्थना की। तो वो प्रभु कह रहे हैं जहाँ कांटा गड़ता है वहीं से ये निकलेगा, जहाँ अपराध होता है वहीं से अपराध दूर होगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं है। कहा जाता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, सर्वतंत्र स्वतंत्र और स्वयं स्वराट हूँ, किंतु ये कहने के लिए मैं भक्त लोगों का हृदय मैं हूँ और मेरा हृदय वो भक्त हैं, भक्तों के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं जानता और भक्त भी हमको छोड़ करके और कुछ नहीं जानते, वो सब पूर्ण रूप से हमारे ऊपर में आश्रित और मैं भी उनके अतिरिक्त दूसरों को नहीं जानता, इसलिए आप जाइए वहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। अर्थात साधु, अर्थात मेरे जो भक्त चूड़ामणि हैं वो मेरे हृदय हैं, मैं उनका हृदय हूँ। इसलिए भगवान से पृथक, जब भगवान का हृदय ही भक्त है तो भगवान से अलग नहीं हुआ, किसी भी व्यक्ति का हृदय ही वो व्यक्ति होता है। आ रहा है समझ में, किसी व्यक्ति का हृदय ही वह स्वयं है, यदि हृदय ना रहे तो वो व्यक्ति ही नहीं रहता। और ऐसा चीज जो भगवान ही स्वयं है, भगवान का हृदय है, और वो करें जो हमारे भक्त लोग हैं, तो भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं हुआ। इसलिए पृथक भगवान अपने से पृथक उन भक्तों को नहीं मानते और भक्त लोग भी अपने से पृथक प्रभु को नहीं जानते हैं। इसलिए भगवान ने और भी कहा है, सच पूज्यो यथा यम, जो लोग हमारे परम भक्त हैं, वो हमारे जैसा ही पूज्य होता है और हमारे समान ही देयम उनको देना चाहिए, तत्मय देयम ततो ग्राह्यम, और उनका प्रसाद भी उसी तरह से लेना चाहिए जैसे मेरा। और ऐसे लोगों को आचार्य माँ बीजानियार हमको ही समझो जो मैं। इसलिए स्थान स्थान पर शास्त्रों ने ऐसा कहा है, भगवान के सहित भक्तों का अभेद ही दिखलाया गया है। यद्यपि वो वैसे सर्वशक्तिमान नहीं है, जगत की सृष्टि नहीं कर सकते, किंतु वो प्रभु से जो चाहेंगे वो करवा लेंगे, तो एक ही बात है उनके हृदय है, इसलिए इनको भगवान कहा गया। भगवान अथ सुत गोस्वामी नैमिषारण्यवासी ऋषियों के निकट सुखदेव की जी का प्रसंग उठाकर, इसलिए सुखदेव गोस्वामी के लिए भगवत शब्द से संबोधन को, पहले तो भागवत प्रधान कहा, अब इसके बाद में भगवान कहा, इसलिए शास्त्रों का विरोधी ये नहीं है भगवान का कहना। हम लोग भी गुरु के लिए कभी भगवान कह सकते हैं, यदि गुरु ऐसे हैं तो व्यास जी के लिए, नारद जी के लिए, शंकर जी के लिए, ब्रह्मा जी के लिए, हमारे महाप्रभु के गणों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए वैयासकी, यद्यपि हम लोग पहले कुछ अनुशीलन कर रहे हैं इसके संबंध में, आर्य सुखदेव गोस्वामी के संबंध में बतलाए हैं। इसी श्लोक में सुखदेव गोस्वामी का नाम उल्लेख नहीं होने पर भी वैयासकी शब्द के द्वारा स्पष्ट किया है। वैष्णव प्रधान कहने से कोई भी हो सकता है, वैसा यदि हो, और भगवान भी कहा जा सकता है, किंतु वैयासकी कहने से एकदम सुखदेव गोस्वामी का ही बोध होता है। इसलिए ये तीन विशेषणों में ये प्रधान है वैयासकी। व्यास में जो गुण है आपत्यवाचक है, ये शब्द आपत्यवाचक माने क्या, जैसे दासारथेय, दासारथी और ऐसे ही शब्द हो सकते हैं, भृगु से भार्गव इत्यादि होता है, उसी तरह से व्यास, व्यास वैयासकी, व्यास नंदन उनको बतलाया गया है। इसके द्वारा क्या बोध होता है, जिस प्रकार से व्यास जी ने अपनी प्रज्ञा के बल से, अपने भक्ति के बल से वेदों का जो कठिन विषय है विभाग किया, वेदों को जानना भी बड़ा भारी कठिन है, वेदों का तात्पर्य ब्रह्मा, वेद प्रकाशित हुए ब्रह्मा जी से, और प्रकाशित किया किसने, नारायण ने, नारायण ने ही उनको कहा कि हमारे प्रभाव से ये तुम इन चीजों को ग्रहण करो। गृहान गति तंगमया ज्ञानम परमम गुह्यम जद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगश्च गृहान गति तंग। वेदों का तात्पर्य चार श्लोकों में उन्होंने श्रीमद्भागवत के रूप में उनको सुनाया, माने वेद ही सुनाया। किसने, ब्रह्मा जी को ये दिया, तेने ब्रह्म हृदय, कौन, भगवान, उनको नारायण कहिए कृष्ण कहिए। ये सुखदेव गोस्वामी व्यास जी स्वयं नारायण है, इसलिए नारायण में और ब्रह्मा जी में वेद का तात्पर्य कौन अधिक जानता है, वेद जिनके मुख से निकला और जिन्होंने प्रेरणा दी उसकी, दोनों में किस कौन अधिक समझेगा। इसलिए व्यास जी उनसे ब्रह्मा जी से भी अधिक समझते हैं, ये समझो। तो इसलिए इन्होंने चारों वेदों का विभाग किया, ब्रह्मा जी ने ही किया, विभाग करके तो फिर हो सकता है कि ब्रह्मा के चार मुख से एक एक वेद निकल रहा हो, किंतु ज्ञाता है कौन? व्यास। इतना ही नहीं, उसको सरल सुबोध और एकत्र करके उन्होंने वेदांत सूत्र उन्होंने लिखा। इतना ही नहीं, वेदांत सूत्र की व्याख्या के रूप में श्रीमद्भागवत को दिया। इसका अतिरिक्त महाभारत और सब पुराणों को उन्होंने प्रकाशित किया। उसमें से समस्त पुराणों में श्रीमद्भागवत को और अधिक रूप में दिया। रासलीला इत्यादि का प्रकाश कौन किया? व्यास ने। और अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को सुनाया, मैंने दिया। इनका जितना जो कुछ ज्ञान भक्ति प्रेम जो कुछ था उसका उत्तराधिकारी ये सुखदेव गोस्वामी है, इसलिए इनको व्यास कहा। पुत्र ही पिता का अधिकारी होता है, तो शिष्य और पुत्र के दोनों रूप में ये उनके उत्तराधिकारी हैं। इसलिए व्यास जैसे गंभीर विचारक तत्ववादी इत्यादि थे, विशेष करके कृष्ण कथा बोलने के लिए वेदार्थ तत्व को जानने वाले और व्यास के तपस्या के फलस्वरूप इनका जो जन्म है, आज जन्म संसार वैरागी, कृष्ण के प्रति विशेष रूप से अनुरागी, सत्समय कृष्ण की भक्ति में भाव में विभावी, ऐसे सुखदेव गोस्वामी के लिए ही व्यास की शब्द का प्रयोग हुआ है। यथार्थ उत्तराधिकारी हैं। इसलिए तीन विशेषणों को दिया। अब यहां पर सुत गोस्वामी ने स्वर्णकादि ऋषियों को बतलाया, विष्णुरातम विष्णुरात परीक्षित जी को कथा सुनाई। पहले उनको सुना, सुन करके पुलकित हुए उन प्रश्नों को, और पुलकित होने के बाद में वो कथा सुनाने बैठे। उसके पहले की बात है, तैयार हो रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने साधु बात दिया। किनको? परीक्षित महाराज जी को साधु बात दिया। साधु बात माने क्या दिया? साधु साधु, ऐसा प्रश्न करने वाला जो था साधु। अब विशेष करके ये कहा भगवान की, अब वो क्या कहा वो आगे कहेंगे। तुमने सारी भगवत लीला कथाओं को जो परम रहस्यमय है हमारे हृदय में उदित कर दिया, हमको भी हमारे लिए भी स्मरण में वो सब चीजें आ गई, हमको भी पवित्र कर दिया। करें यह विष्णुरात। विष्णुरात किसको कहते हैं? कहीं कहीं पर रात शब्द का पंच रात ज्ञान, विष्णु तत्व ज्ञान, विष्णुरात में विष्णु का जो कुछ तत्व है। विष्णु शब्द से गर्भोदशाई से लेकर शेष से लेकर और कृष्ण तक बजेंद्र नंदन तक समझो, इनका तत्व ज्ञान प्रेमावक्ति इत्यादि सबको जानने वाले हैं, ये समझो विष्णुराज। और प्रथम स्कंद में ऐसा लिखा गया है, परीक्षित का जब जन्म हुआ, कब जन्म हुआ? अश्वत्थामा ने बाण मारे और वो बाण परीक्षित जी की मैया उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और बच्चे को जला डालने की चेष्टा की। उतने में उन्होंने कृष्ण को पुकारा, कुंती ने पुकारा और एकदम कपड़े जहां तहां छोड़ती हुई, अंचल कहां गिरा कहां, और कृष्ण के तरफ में दौड़ी उत्तरा, रक्षा कीजिए रक्षा। बस झट कृष्ण उसके भीतर में पहुंच करके आत चक्रो, हाथ में चक्र और गदा लेकर उस ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया, इनको रक्षा। इसके बाद में इनका जन्म हुआ। जन्म होने पर ये सबको देख रहे हैं, परीक्षा करें किसने हमारी रक्षा की, वही तो ये नहीं है, ये चारों तरफ में देख रहे। जब तक नहीं देखा तब तक परीक्षा करता रहा, वही तो नहीं, ऐसा ही तो, वही तो नहीं, इसलिए उनका नाम परीक्षित। जिस समय कृष्ण को देखा कि ये हाँ वही, परीक्षा करके कृष्ण को स्थिर किया, जो हमारे हमको गर्भ में जो दर्शन दिए वही ये व्यक्ति, इसलिए उनका नाम परीक्षित हुआ। ऐसा इसके बाद में जब वो कुछ बड़ा हुआ, कृष्ण ने अपने आप उसको गोदी में खिलाया, आदर किया, जत्न किया, उसकी रक्षा की गई। जब कुछ और बड़े हो गए या उसी समय में रातो अनुग्रहाय विष्णुना प्रभ विष्णुना तस्मात् नामना विष्णु रात इति लोके भविष्यति, ये प्रथम स्कंद में ऐसा लिखा गया है। जिस समय वो पैदा हुए या कृष्ण ने ही उनकी रक्षा करके और पांडवों को युधिष्ठिर इत्यादि को अनुग्रह करके इनको उनके हाथों में दिया। आराधना ने होता है देना, प्रदान करना, तो यहां पर यही बतला रहे हैं। उसी में रातो अनुग्रहार्थाय, अनुग्रह करते हुए प्रभ विष्णुना विष्णु, सब प्रकार से जो प्रभावशाली हैं ऐसे जो विष्णु, ऐसे विष्णु ने तस्मान उन्होंने युधिष्ठिर इत्यादि को इस पुत्र को सौंप दिया, इस बच्चे को सौंपा, किस लिए? तुम्हारे वंश का ये रक्षक होगा और विश्व में तुम्हारी कीर्ति फैलाएगा और ये भागवत प्रधान होगा, इसी से भागवत प्रकटित होगा। और ऐसे ही बात थी, इसलिए अनुग्रहार्थाय पांडवों पर अनुग्रह करने के लिए, जगत के जीवों पर अनुग्रह करने के लिए किसके द्वारा? श्रीमद् भागवत को ये प्रकटित कराएगा। इसलिए जगत पर अनुग्रह करने के लिए, उन लोगों पर अनुग्रह कर उनके वंश में ऐसे परीक्षित महाराज जी को जन्म दे करके उनको सौंप दिया, इसकी रक्षा करो। तस्मात् नामना विष्णुरात इति लोक, सर्वेश्वर श्री कृष्ण जगत के ऊपर कृपा होकर के इस बालक को तुमको दिया है, किसको? पांडवों को दिया है। अतएव विष्णु कर्तिक रात्र, विष्णु के द्वारा रात्र अर्थात दिया, प्रदान किया गया, इसलिए प्रदान किया गया। इसलिए तीन प्रकार के अर्थ उन्होंने बतलाए, इसलिए उनका नाम विष्णु रात हुआ। विष्णु के द्वारा सौंपा जाना, दिया जाना, विष्णु रात माने विष्णु तत्व ज्ञान कृष्ण तत्व के लिए सबके, और विष्णु रात, विष्णु रात माने, और एक क्या बतला है, विष्णु कार्तिक रक्षित, और एक होगा रात माने ज्ञान, विष्णु के तत्व ज्ञान में जो पारंगत हैं, इसका तात्पर्य क्या? जैसे सुखदेव गोस्वामी हैं, इनसे कम नहीं, आगे ये बतलाएंगे इस चीज को। उनको मुनि सत्तम कहा किसने? परीक्षित महाराज ने। इन्होंने कहा उनको राजर्षि सप्तम, आगे के श्लोक में आएगा राजर्षि सप्तम, हे राजर्षि सप्तम, और उन्होंने कहा मुनि सत्तम। हम मुनि सत्तम और राजर्षि सप्तम में जब हम विचार करेंगे तो विचार करने में किसका श्रेष्ठ तत्व है, ये कुछ विचार योग्य है, हम लोग प्रसंग पर इसको ले आएंगे। यदि परीक्षित महाराज जी का जन्म नहीं हुआ होता और ये सुखदेव गोस्वामी से ऐसे सुंदर प्रश्न नहीं करते तो श्रीमद् भागवत लुप्त ही रहता, प्रकाशित नहीं होता। इसलिए कृष्ण लीला कथा के प्रकाश के उपयुक्त ये पात्र हैं। ऐसे को कृष्ण ने रक्षा करके और पांडवों को सौंप दिया, जो विष्णु तत्वज्ञ थे, तीनों अर्थ एक में आ गया। सुखदेव गोस्वामी ने साधु बात दे करके हरि कथा आरंभ किया। कैसी कथा? कली कल्मषाघ्नम, कली कल्मष घ्न, घ्न माने हनन करना, कली के कल्मष को दूर करने वाली, कृष्ण नाम से समझ सकते हैं, ये सबके चित्त को आकर्षण करने वाले हैं। तो इनकी लीला कथाएं कैसी होगी? और भी आकर्षक होगी। किसी व्यक्ति में उतना गुण हो ना हो, किंतु उसकी बात को हम लोग यदि दलाल कोई रहे ना, तो उस चीज का जिसको बेचना है उस चीज की महत्ता, वाह वाह बैगुन बैगन यथार्थ में विशेष गुण है उसमें, इसलिए बैगन कहलाता है। महाराज आपने ठीक ही कहा, बैगन बहुत सबसे सुंदर सब्जियों में सबसे श्रेष्ठ है। उसको लपड़ा में दीजिए, दाल में सिद्ध दीजिए, चोखा बनाइए, भरता बनाइए, वो क्या कहते हैं भाजा बनाइए, कोफ्ता बनाइए, और जो कुछ इच्छा हो सब में उसको दे दीजिए। कितना गुण ही गुण है, इसलिए विशेष गुण है महाराज। अच्छा, और जब काजे नहीं, इसमें कोई गुण ना, सर गुण नहीं है सचमुच में, ये बेगुण बिना गुण बेकार का ये सब रोगों का घर है। बैगन खाने से ही खुजली होगी और होगा। काजे ऐसा क्यों कहा तुमने? तो महाराज मैं बैगन का नौकर नहीं हूँ, आपका नौकर हूँ, आप जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा ही। यहाँ पर कह रहे हैं कृष्ण आकर्षक है। एक आदमी मान लिया कि जैसे काला सा है ना, काला है, पैर भी टेढ़ा है और भी क्रूर है। अब कोई दलाल है, वो कह रहा है कि अरे आह सांवला सा है, कोई खराब नहीं लड़का है, सांवला है, मुख पर बहुत सुंदर पानी है। सांवला लड़की भी कृष्ण सांवला नहीं हुए, अरे उस बड़ा गुणी है, बड़ा सचित्र है, गुणवान है, पैसा भी है, ये कह करके पुल बांध दी तारीफ की, और अब व्यक्ति वैसा नहीं। ये कथाएं उस व्यक्ति से भी अधिक बढ़ा देती है या उसका आकर्षण बढ़ा देती है। तो कहते हैं कि कृष्ण तो सचमुच में सचिनानंद घन विग्रह परम आनंदमय सब आकर्षक है, उनकी लीला कथाएं और भी आकर्षक। कोई भी कृष्ण के तरफ में आकर्षित होता है उनका रूप देख करके नहीं, बल्कि उनका रूप गुण नाम लीला ये सब सुन करके हम साधक लोग भी उनके तरफ में आकर्षित, इसलिए लीला कथाओं को कथाओं से सुनने से ही भक्ति होती है। इसलिए भक्ति की जननी ये कथा है, इसलिए सबसे पहले श्रवण। इसलिए भगवान की लीला कथाएं जो हैं वो भी सर्वचित आकर्षक परमानंद घन विग्रह है वो कथा है, किंतु हम लोग अयोग्य होने के कारण इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। ऐसी वो कथाएं हैं, हृदय का जो रोग है सबसे बड़ा, अविद्या भव रोग और विषयों के प्रति आसक्ति काम, ये कैसे दूर होगा? अभी अविच्छेद्य संबंध है हमारा उन काम के साथ ही, किंतु लीला कथाएं जितनी अधिक होती जाएंगी, जितना श्रवण करता जाएगा उतना ही अधिक रूप में उसका काम रोग और किसी तरह से नहीं जाएगा। काम क्रोध लोभ मद मोह ऐसे नहीं जाएंगे, जितना ही हरि कथा अधिक होगी उसको धारण करता जाएगा, वो अपने आप जबरदस्ती उन काम क्रोध लोभ मोह का स्थान ये लेती जाएगी और उनको खदेड़ती जाएगी, अंत में सब प्रकार से उसको दूर कर देगी। ये हरि कथा की ऐसा उनका प्रभाव है। विशेष करके इस श्लोक में कहा गया है कली कलमसघ्न, कली के कलमस को दूर करने वाले ये लीला कथाएं। कली कलमस अग्नम माने इसके कुछ अर्थ निकलते हैं, कलौ जंग कलमसम तम हंती, कलौ के जो कलमस है, कली के कलमस क्या है? कली के कलमस अभी देख रहे हैं ना, ये कैसा चारों तरफ में कली संदेह विवाद सब ला करके परस्पर को दूर कर देता, अलग अलग कर देता है। कलम कलहम लाती, कलह लाती, अनावश्यक रूप में सबसे कलह कर देता है, ऐसा संदेह उत्पन्न करता है जो परस्पर में वो इति नहीं करती, इसको हंती उसको दूर करने वाले। स्वभाव सौजी पाप आसक्त होता है, हम साधु जैसे बैठे हुए यहाँ पर हैं, भीतर में ना जाने कौन कौन से पाप भीतर में हैं, थोड़ा सा कहीं उद्दीपना आने पर हम न क्या कर देते हैं। कृष्ण चरित्र आस्वादन से ये सब पाप दूर हो जाते हैं। अथवा कली रूपम ज कलमसम तम हंसी, कली स्वयं ही कलमस है, कली स्वयं कलमस है, इसको नाश किसने किया? परीक्षित महाराज जी ने उसको दमन कर दिया कली को। कली स्वयं हम लोगों में प्रवेश कर जाता है, पहले विषय लोगों में किया, विषय लोगों से धीरे धीरे योगी तपस्वी ज्ञानी गया और युगों में गया वहां, और फिर कली युग में ये साधु संतों में भी, इन लोगों में भी दो आदमी एक साथ में नहीं रहते, सब में कलह ला देता है। उसको ये स्वयं हरि कथा उनको दमन करती है। इसीलिए परीक्षित महाराज जी ने कली के पाप इत्यादि को सबको हरि कथा के माध्यम से सब कुछ आता है, इसलिए पाप मूर्ति है। अथवा कली, कली शब्द का अर्थ है कलह, कला माने क्या, और तो कला ही है, कली में सबसे बड़ा कला है। हमारा साधन क्या है, साध्य क्या है, सब देवता देवियों का पूजा करें उससे मिल जाएगा, धन मिल जाएगा और सब चीज मिलेगी। हमारा उपास्य क्या है, उपासना क्या है, इसलिए साध्य और साधन के संबंध में तरह तरह के संदेहात्मक संकल्प विकल्पात्मक विचार है। ये जब तक ठीक नहीं होगा तब तक हम किसी विषय में हमारी निष्ठा नहीं, इसको ये दूर करने वाले कौन, हरी कथा दूर करने वाली है। यदि कोई कुछ नहीं जानता है, सनातन गोस्वामी जानी है साध साधन कुछ भी ना जानी, कुछ भी नहीं सकता, कुछ भी नहीं जानता, आप कृपा करके बतलाइए। हमारे उनके रघुनाथ भट्ट के गोस्वामी के पिता तपन मिश्र महाप्रभु जी से बोले दक्षिण पूरब और बंग में जाते, साधन साधन इत्यादि में कुछ नहीं जानता, भजन कुछ नहीं जानता, आप कृपा करके बताया, जब समय आने पर बतलाऊंगा, अभी जाओ हरि नाम करना और मैं वाराणसी आने पर बतलाऊंगा। तो उन्होंने हरि कथा सुनाई। जिस समय सनातन गोस्वामी को कथा सुना रहे थे उसमें तो होंगे कि नहीं है, वो पूरे सुने और उनका सब कुछ संदेह दूर हो गया। अतएव कृष्ण चरित्र कैसा है, कली कलश, कली कलमस दूर करने वाला है। इसलिए विष्णु रात शब्द का व्यवहार ये किया जाता है, विष्णु रात का विशेषण बनाओ, ये हरि कथा का विशेषण अभी बतलाया, कली कलमस अघ्नम, हरि कथा कैसी है ऐसी, और फिर इसको यदि न दे करके ये बतलाया जाए कली कलमस अघ्न विष्णु रात को कहा, आया समझ में, विष्णु रात का विशेषण बनाओ इसको, अभी तक तो हरि कथा का विशेषण यह शब्द था, अब कली कलमस अघ्न ये विष्णु रात का बतलाओ उनका विशेषण, तब क्या अर्थ होगा, ये कली के कलमसों को दूर करने वाले हैं, दूर किया था आपने धनुष बाण के द्वारा, उसको दमन किया था और एक किसी विषय में रहने के लिए उसको बाध्य किया था, और जब तक वो जीवित रहे कली का दोष जगत में नहीं रहा, सबसे दूर रहा, इसलिए ऐसे दूर करने वाले कली, कली काल के दुखों को, कष्टों को और कलमशों को दूर करने वाले, दोषों को दूर करने वाले परीक्षित महाराज जी के निकट इन सब कथाओं को बोलना आरंभ किया। अब अगला श्लोक हम लोग कल आज यहीं तक रहे, वंशा कल्प स्वरूप है, बोलो 15 श्लोक हम लोगों ने एवं निशम भृगुनंदन साधुवादम श्लोक की व्याख्या की, उसमें श्री गोस्वामी ने बतलाया कि व्यास जी ने, सुखदेव गोस्वामी ने या परीक्षित महाराज जी ने उनको बयात की भगवान और भागवत प्रधान बतला करके बहुत सी उद्दीपनाओं को उनके हृदय में मन उद्दीपनाएं हुई और उन्होंने प्रत्यर्च विष्णु रातम परीक्षित महाराज जी की प्रति अर्चना की, अर्थात उन्होंने जैसे अर्चन की इन्होंने भी वैसे ही किया और उनको कथा कहने के लिए उनके हृदय में लालसा जगाई। इसके बाद में सुखदेव गोस्वामी ने सुन करके जैसे परीक्षित ने किया था सुखदेव गोस्वामी उबाचर सम्यक व्यवस्थितो बुद्धि सौ राजर्षितम राजर्षितम वासुदेव कथायां ते जज्जाता नैच्छिकिं रति वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान तीन पुनाति वक्तारं प्रक्षपं श्रोत्रिं तत्पाद सलिलं यथा। साधारण इसका तात्पर्य है सुखदेव गोस्वामी जी बोले सम्यक व्यस्त तव राजन हे राजर्षि सत्तम राजर्षियों में उत्तम श्रेष्ठ आपकी बुद्धि या आपके हृदय में नैष्ठ की रति उत्पन्न हो गई, एक निष्ठा उत्पन्न होता है और एक नैष्ठिकी रति होती है, दोनों में अंतर है। निष्ठा होता है अनर्थ निवृत्ति के बाद में बुद्धिपूर्वक जब हम स्थिर करते हैं कोई बात जो कृष्ण का भजन करूंगा तो ये हुई निष्ठा, और नैष्ठिकी उस निष्ठा से उत्पन्न हुई जो रति है, रति माने भाव, ये अलग है, वो दोनों एक ही है। हे राजन आपकी वासुदेव कथायां वासुदेव की कथा में भगवान कृष्ण की कथा में आपकी नैष्ठिकी रति है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है आपने भोजन और पानी दोनों बंद कर दिया है। आप कथा के समय में चित्त आपका कहीं नहीं जाता, एकदम स्थिर होकर के मानो उसको पी रहे हैं। थोड़ी सी कथा बंद होने पर आपके प्राण मानो चले जाते हैं, इसलिए आपके अंदर में नैष्ठिकी रति उत्पन्न हुई। विशेष करके सम्यक व्यवस्थितो सम्यक रूप से व्यवस्थित आपकी बुद्धि है। हे राजन वासुदेव कथा के लिए जो प्रश्न है वो पुरुषान तीन पुनाति ही, जो कथा का प्रश्न करता है, कथा के लिए प्रश्न करता है, महाराज आप कृष्ण की लीला कथाओं को करें, उन्होंने क्या क्या लीलाएं, भगवत संबंधी कोई भी प्रश्न हो तो तीन पुरुषों को पवित्र कर देता है। कौन? तीन पुरुष। जो प्रश्न करता है, जो उत्तर देता है और जो सुनता है, ये तीन पुरुष, श्रोता वक्ता प्रश्न करता, तीनों को। जैसे पाद सलिलम तथा आपके चरण कमलों की जैसे चरणामृत है अथवा आपके चरणों से निकली हुई गंगा, जैसे गंगा ऊपर नीचे और पृथ्वी तीनों लोकों को पवित्र कर देता है, अथवा जिन्होंने लाया किसने, जिन लोगों ने प्रेरणा दी लाने की, सगर महाराज इत्यादि, और जिनको उनसे संपर्क कराया जगत के लोग, और जिनको पानी स्पर्श हुआ सभी वैकुंठ को चले। अथवा पाद सलिलम यथा सालग्राम की जो सेवा की जाती है, तो जो पानी लाया गंगा जमुना का या कोई पवित्र पानी, और किसी ने उसको स्नान कराया और किन्हीं ने उनका पानी चरणोदक लिया, जो पानी लाया जिसने ठाकुर जी के स्नान कराया और जो जो उस पानी को ग्रहण किया वो सभी लोग पवित्र बन जाते हैं। ठीक ऐसे ही ये कथाएं आती हैं। प्रश्नकर्ता के वजह से वो आई हरि कथा, जिन्होंने कहा वो हुआ और उसको जो सुना वो तीनों पुरुषों को उद्धार करते। सनातन गोस्वामी की विशेष इसमें टीकाएं, श्रोता और वक्ता समजातीय होना चाहिए, तब उस कथा में रस आता है। यदि श्रोता उत्तम कोटि का हो, वक्ता और श्रोता निम्न कोटि का हो, तो उसमें रसास्वादन नहीं होगा, उसकी बातों को नहीं समझ सकेगा, उल्टा ग्रहण कर लेगा। अथवा वक्ता हुआ उच्च कनिष्ठ हुआ और श्रोता हुआ उत्तम, तो उसको अच्छा नहीं गा रुचकर नहीं तो उठ करके चला जाएगा। और यदि मान लिया कि रुचकर नहीं हुआ उसको और न भी चला गया, तो वो ठीक से उसमें कोई प्रश्न नहीं करेगा, क्योंकि उसमें आनंद ही नहीं आता, गूढ़ कथाएं नहीं होंगी। इसलिए श्रोता और वक्ता दोनों का समजातीय एक समान रुचि होनी चाहिए। अधिकार यदि ऐसा हो तो बहुत ही सुंदर है, तब उस कथाओं के में रुचि आएगी। जैसे महाप्रभु थे 3.5